ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक जारी। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा मोबाइल ऐप शुरू किया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध होंगे। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में देश भर के आगंतुकों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में पार्टी के सभी नव निर्वाचित विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसमें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। पार्टी ने बैठक के लिए दो केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को नियुक्त किया है। नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा कार्यालय में मौजूद हमारी संवाददाता पल्लवी के पास। पल्लवी, भाजपा विधायक दल की बैठक जारी है और क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
जी दिव्या, अब से थोड़ी ही देर में तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं अभी भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं।
जी।
और बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है।
जी।
यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। दिल्ली विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ भी दिल्ली अच्छा दिव्या अभी एक जानकारी हमारे पास आई है कि बैठक शुरू हो गई है, तो कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे और इसके साथ ही बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी।
बिल्कुल पल्लवी, और सब दिल्लीवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो जरूर हम लोग सब जान पाएंगे थोड़ी ही देर में। तो आप सबको बता दें कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। धन्यवाद पल्लवी आपका हमसे जुड़ने के लिए। राजधानी के रामलीला मैदान में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल में शामिल विधायक भी शपथ लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने मार्ग परिवर्तन को लेकर परामर्श जारी किया है। बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ से दिल्ली गेट, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक, अरुणा आसफ अली मार्ग मिंटो रोड, कमला मार्केट से हमदर्द चौक मार्गों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सुभाष पार्क, टी पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ, अजमेरी गेट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग लालबत्ती की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार ने आज नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने श्री राजीव कुमार का स्थान लिया है। कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है।
राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्ञानेश कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि ये ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का विवरण भी शामिल है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन उन्नत परिधानों के उत्पादन के साथ कपड़ा उद्योग में क्रांति के लिए तैयार है। ये परिधान टिकाऊ और आग प्रतिरोधी है। हरियाणा के भिवानी में आज वस्त्र और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा ने कहा कि इन नवीन सामग्रियों का जल्द ही बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा।
इकोसिस्टम एक बनना चाहिए जिसके अंदर पहले तो ट्रेंड इंजीनियर मिलने चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल में, फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर रिसर्च होनी चाहिए जिसमें हम अपने प्रोसेस को खुद डेवलप करें। तो ये सारा करने के लिए भारत में गवर्नमेंट ने 1,480 करोड़ का बजट रखा हुआ है।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत पुल और सड़क निर्माण, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाले विशेष परिधान अब भारत में ही बनाए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व और अग्रणी नवाचारों की पेशकश करके वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि स्पेस डॉकिंग प्रयोग भारत की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है जो गगनयान, चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री सिंह ने कहा कि देश ने उपग्रह प्रक्षेपण के मार्ग में वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता अर्जित की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत संगठन को अपने समर्थन के साथ ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएगा।
मैं आरडो को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडो की प्रतिबद्धता एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है जो आरडो को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है।
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ये राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय के अनुसार आंध्र प्रदेश के लिए 608 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170 करोड़, ओडिशा के लिए 255 करोड़, तेलंगाना के लिए 231 करोड़ और त्रिपुरा के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह सहायता राज्य आपदा मोचन कोष के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पहले से आवंटित धन से अलग है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 18,322 करोड़ रुपए से अधिक और NDRF से 18 राज्यों को 4,808 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज फास्टैग नियमों में बदलाव के कारण लेन देन में कमी आने के दावों का खंडन किया। NHAI ने एक बयान में कहा कि 28 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी परिपत्र का फास्टैग ग्राहक अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। परिपत्र का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फास्टैग लेनदेन वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के सही समय के भीतर संसाधित हो ताकि ग्राहकों को देरी से होने वाले लेनदेन से परेशान न होना पड़े। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में देश भर के आगंतुकों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। अब तक मेले में 44 देशों के लगभग 650 विदेशी मेहमान भ्रमण कर चुके हैं। इस दौरान सभी विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति, कला और खानपान से रूबरू हो रहे हैं। विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा आगंतुक बिम्स्टेक, बेलारूस, कैमरून, इथोपिया, लेबनान और मिस्र जैसे देशों से हैं। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहा है। 10 दिवसीय उत्सव भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज नागरिकों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है।
इस अवसर पर आज दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने मिंटो ब्रिज के पास शिवाजी पार्क में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। निगम पार्षद किरण बाला ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन सदैव प्रेरणादायी रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बच्चों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज नरेला क्षेत्र में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में भी जागरूक किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय का 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 22 फरवरी को विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी सहित अन्य विषयों के छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग ने आज कृष्णा सोबती के जन्म शताब्दी के अवसर पर सोबती की सोहबत में विषय पर व्याख्यान आयोजित किया। वरिष्ठ कथाकार और अंतर्राष्ट्रीय किताब पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री ने कहा कि कृष्णा जी किसी भी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। नई दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी एलुमिना ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज को 2-1 से पराजित कर पद्मश्री श्यामलाल मेमोरियल इनविटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। विजेता टीम के लिए दोनों गोल प्लेयर ऑफ द मैच अक्षिता ने किए। पराजित टीम के लिए एकमात्र गोल सोमवती ने किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिल्ली यूनिवर्सिटी एलुमिना की मनिता को मिला। पुरुष वर्ग का खिताब मेजबान श्यामलाल कॉलेज ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की टीम को हराकर जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल के उद्घाटन की सराहना की। उन्होंने इस टर्मिनल को क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। केंद्रीय पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नामग्याल दोर्जी के साथ इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। दिल्ली में आज धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक जारी। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा मोबाइल ऐप शुरू किया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध रहेंगे। और 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में देश भर के आगंतुकों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।